اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے دوسرے باب، یعنی واقعہ کربلا میں ہونے والی تحریفات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس باب کے آغاز میں شہید مرتضیٰ مطہری سب سے پہلے خود لفظ تحریف کا معنی بیان کرتے ہیں۔ لفظ تحریف عربی زبان میں ہے رے فے اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس مادے سے مشتق ہوا ہے، باب تفعیل سے ہے۔ تحریف در حقیقت کسی عبارت میں یا کسی چیز میں اس طرح کی تبدیلی لے کے آنا کہ جو اس عبارت کے اصل مقصود اور اصل ہدف اور اصل معنی کو تبدیل کر دے، یعنی متکلم کا ایک مقصود ہو، ایک ہدف ہو، اور اس ہدف کے تحت اس نے وہ عبارت بیان کی ہو، اور اس طرح اپنے معافی ضمیر کو مخاطب تک بیان کرنا چاہتا ہو، لیکن اسی عبارت کو راستے میں کوئی اس طرح تبدیل کر دے، یا اس میں کوئی کمی لے آئے، یا اس میں کوئی چیز زیادہ کر دے، یا دونوں کچھ چیز کم کر دے اور کچھ زیادہ کر دے، یا یہ کہ اس میں جملات کی ترتیب کو اس طرح کر دے کہ جس سے سننے والا اسے اور مقصود لے، اس کے برخلاف کے جو متکلم کا معافی ضمیر تھا اور جس کے لیے متکلم نے یہ عبارت یا یہ گفتگو کی تھی، اسے کہتے ہیں تحریف۔ تحریف آگے سے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی اور ایک تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یعنی عبارت کے الفاظ میں کوئی تبدیلی انسان کر دے، اور ایسی تبدیلی کہ جو اس کے مقصود کو تبدیل کر دے۔ مثلاً عبارت کے الفاظ میں سے کچھ الفاظ کو کم کر دے، کچھ جملوں کو کم کر دے، یا کچھ جملے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے، یا یہ کہ پوری کی پوری عبارت کو بالکل جو ہے وہ تبدیل کر دے، یا یہ کہ اس کے جملوں کی ترتیب کو جو ہے وہ آگے پیچھے اس طرح سے کر دے کہ اب متکلم کا جو معافی ضمیر تھا اور متکلم نے جس مقصد کے لیے وہ عبارت کہی ہے، وہ مقصد صحیح طرح سے مخاطب تک منتقل نہ ہو، متکلم کا معافی ضمیر صحیح طرح سے مخاطب تک منتقل نہ ہو۔ یہ ہے تحریف لفظی۔ اور تحریف معنوی کیا ہے؟ تحریف معنوی یہ ہے کہ الفاظ میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، متکلم نے جو الفاظ جیسے کہے ویسے ہی الفاظ مخاطب تک منتقل کر دیے جائیں، لیکن اس کی تفسیر اس طرح سے کی جائے کہ وہ متکلم کا مقصود نہ ہو۔ مثلا ایک عبارت ہے، اس کے دو طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی متکلم کا مقصود ہو اور دوسرا معنی اس کا مقصود نہ ہو، اور جان بوجھ کے ایسے تفسیر کی جائے یا تا انجانے میں کہ جو متکلم کے مقصود کے خلاف ہو۔ یہاں لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن معنی میں کیونکہ تبدیلی آ جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تحریف معنوی، یا متکلم کے ہدف میں آپ تحریف کر دیں۔ واقعات میں بھی اسی طرح تحریف لفظی بھی ہوتی ہے، تحریف معنوی بھی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ واقعات جس طرح سے رونما ہوئے ہیں، آپ ان میں کچھ کمی یا زیادتی کر دیں، ان کو بیان کرتے ہوئے کچھ واقعات کو نہ بیان کریں، جان بوجھ کر اس طرح سے نہ بیان کریں کہ اگر ان کو بیان نہ کرنا اصل واقعے کے ہدف کو جو ہے وہ اس میں ضرر آئے، یا یہ ہے کہ آپ کچھ واقعات اس میں اضافہ کر کے بیان کریں، یا اس واقعے سے، اس حادثے سے متعلق آپ جھوٹے واقعات گھڑ کر جو ہے وہ بیان کریں، تو یہ جو ہے وہ لفظی تحریف ہوگی۔ لیکن اگر اس واقعے کو بالکل صحیح طرح سے آپ بیان کریں، لیکن اس کا تجزیہ و تحلیل ایسے کریں، اس کی تفسیر ایسے بیان کریں، اس کے عوامل کو اس طرح سے بیان کریں، या उसके आदाफ को इस तरह से बयान करें कि वो उस असल वाक़े के आदाफ के बरखिलाफ़ हो, असल वाक़े के जो तहलील बनती है उसके बरखिलाफ़ हो, या उसके आदाफ और उसके अवामिल के ख़िलाफ़ हो, तो इसको हम कहेंगे कि उस वाक़े में तहरीफ़ मानवी हुई है। ये एक लिहाज से तहरीफ़ की दो किस्में। एक और लिहाज से तहरीफ़ की दो और अकसाम हैं, वो ये है कि मौजू के लिहाज से, यानी किस चीज़ के बारे में तहरीफ़ की जा रही है। एक दफ़ा मुमकिन है जिस चीज़ के बारे में तहरीफ़ की जा रही हो वो चीज़ ख़ुद इतनी अहम ना हो, उसमें तहरीफ़ कर दी गई। अब जो है वो उस ये तहरीफ़ भी जो है वो मज़मूम है, लेकिन इसका असर आवाम पर इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उस चीज़ की अहमियत आवाम के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती आवाम की ज़िंदगियों में, तो असर इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके मुकाबले में मुमकिन है एक चीज़ बहुत अहमियत की हामिल हो, इंसान की ज़िंदगी पे उसका गहरा असर हो, अब उसमें जब तब्दीली की जाए तो ये मामूली तहरीफ नहीं होगी, ये बहुत ही संगीन तहरीफ होगी। तो पास मौजू के लिहाज से एक मामूली तहरीफ होगी और एक तहरीफ जो है वो संगीन और ऐसी तहरीफ होगी कि जिसके असरात बहुत गहरे मुरतब होंगे। अब वाक़या करबला के हवाले से शहीद मुर्तज़ा मुतहरी फरमाते हैं कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें दोनों तरह की तहरीफ़ें की गई हैं, इसमें लफ्ज़ी तहरीफ़ें भी की गई हैं और मानवी तहरीफ़ें भी की गई हैं। इंशाल्लाह हम मानवी तहरीफ़ों को आगे जाकर बयान करेंगे कि मानवी तहरीफ़ें वाक़या करबला में कैसे हुई। लफ्ज़ी तहरीफ़ें शहीद मुर्तज़ा मुतहरी इस किताब के दूसरे बाब की पहली जो तकरीर है उसमें लफ्ज़ी तहरीफ़ों की और जो वाक़या करबला में कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे झूठ को शामिल किया गया है उसकी कुछ मिसालें शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने बयान की है। इंशाल्लाह आप लाजमी तौर पे जाकर उन मिसालों को देखिए और ख़ुद भी अपने मुतालियात को वाक़या करबला के बारे में मुस्तनद किताबों से इस कदर बढ़ाइए कि ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कहाँ पर वाक़या करबला हमारे तक सही अंदाज़ में पहुँचाया जा रहा है और कहाँ पर उसमें तहरीफ़ की जा रही है, कहाँ पर वो वाक़यात के जो अंजाम नहीं पाए उन वाक़यात को हमें उस सूरत में जो है वो हमारे लिए बयान किया जा रहा है, क्योंकि वाक़या करबला हमारे लिए इंतहाई अहम वाक़या है। वाक़या करबला हमारे लिए एक हुज्जत है। अगर एक ऐसी चीज़ में तहरीफ़ कर दी जाए कि जो इंसानों के लिए हुज्जत हो, मसलन इमाम के कलाम में तहरीफ़ करना, नबी के कलाम में तहरीफ़ करना, कुरान मजीद में तहरीफ़ मानवी करना, तहरीफ़ मानवी कुरान मजीद में हो या तहरीफ़ लफ्ज़ी हो मानवी आयमा मासूमीन और अम्बिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हो, तो क्योंकि उनका आयमा मासूमीन का और कुरान का कौल हमारे लिए हुज्जत है, मासूमीन का फ़ेल हमारे लिए हुज्जत है, लिहाजा उनके फ़ेल में और उनके कौल में किसी किस्म की भी तहरीफ़ हमारी ज़िंदगियों पर गहरा असर मुरतब कर सकती है, मुमकिन है हमें हिदायत की बजाय गुमराही की तरफ लेके जाए अगर इमाम से मंसूब एक झूठी हदीस हमारी तरफ हमसे बयान की जाए, या एक वाक़े को गलत तौर पर और तोड़ मोड़ कर बयान किया जाए, या जिस तरह से वो वाक़या रोनुमा हुआ है उस तरह उसको ना बयान किया जाए और वो वाक़या भी आयमा मासूमीन से रिलेटेड हो, ऐसा वाक़या हो कि जिसका हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी इज्तमाही ज़िंदगियों पर, हमारी इनफरादी ज़िंदगियों पर गहरे असरात हों, तो ऐसे वाक़े में तहरीफ़ एक संगीन तहरीफ़ है और हमें उस हवाले से होशियार रहना चाहिए। अब लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, यहाँ शहीद मुर्तज़ा मुतहरी कहते हैं देखिए लोगों की दो जिम्मेदारियाँ बनती हैं, एक तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के एतबार से ज़िम्मेदारी बनती है, जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मसलन खतीब, मसलन जाकिर, मसलन कोई आलम दीन आके गलत अंदाज में वाक़यात करबला को नकल कर रहा है और वहाँ पे मसलन झूठ बयान कर रहा है, तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के एतबार से भी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसका रास्ता रोकें, अच्छे अंदाज में उस खतीब से गुफ्तगू करके, या हत्ता कहीं अमली इकदाम करना पड़ता है, मजलिस के दौरान खड़े होकर करना पड़ता है, किसी भी तरह से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के ज़रिए से इस तहरीफ का रास्ता रोकें, एक ज़िम्मेदारी ये बनती है। दूसरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि देखिए अक्सर हम लोग ये पसंद करते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल इस्तेमाल होती है कि फ़लाने की मजलिस लग गई है, यानी जिस मजलिस में ज़्यादा वाह वाह हो, जिस मजलिस में ज़्यादा गिरिया हो, हम समझते हैं वो मजलिस कामयाब मजलिस है। नहीं, हम इस मेयार को अपने अंदर से निकालें, अपने जहनों से निकालें, नहीं ये मेयार सिर्फ नहीं है, मेयार ये है कि उस मजलिस में हक हमारे तक बयान हमारे लिए बयान किया जाए। अब अगर हक बयान किया गया, ज़्यादा वाह वाह हो गई है तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा वाह वाह ना हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हक नहीं बयान किया गया, हक के बजाय बातिल बयान किया जा रहा है, बातिल पर वाह वाह होना कोई मुफीद चीज़ नहीं है। बस अपनी इस अप्रोच को, अपनी इस ज़हनी सोच को हम जो है वो बदलें, ये दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि इससे सुए इस्तफादा ना किया जाए। यहाँ पे शहीद मुर्तज़ा मुतहरी एक और मतलब बयान करते हैं, और वो ये कि देखिए, कहते हैं कि किसी वाक़े में तहरीफ या तो तब होती है कि जब उस वाक़े के मोतबर अंदाज में वो वाक़ा हमारे लिए नकल ना हुआ हो। तो अब यह है कि मुमकिन है कि उस वाक़े को फिर गैर मोतबर, उसमें तहरीफ के ज़्यादा एहतमालात होते हैं और गैर मोतबर तरीक़ों से वो हमारे तक पहुँचता है, लेकिन वाक़े करबला मोतबर नकलों के उनवान से और मोतबर अंदाज में सनद के एतबार से गनी है। उसकी एक वजह यह है कि एक तरफ तो उसके रावी ख़ुद अहल बैत हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह यहाँ हैं, जनाब इमाम सज्जाद और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ख़ुद उसके मुस्तकीमन और डायरेक्ट रावी हैं। तो कैसे हो सकता है कि वो वाक़ हमारे तक सही तरह से ना पहुँचा, और बाद में आयमा ने इतना ज़्यादा एहतमाम किया है, इस वाक़े को इतनी अहमियत दी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि बाद में ये वाक़ हमारे तक सही तरह से ना पहुँचा हो। दूसरी जानब इस वाक़े में खुतबात ज़्यादा इरशाद किए गए हैं, जनाब ज़ैनब के खुतबात, जनाब इमाम सज्जाद के खुतबात, जनाब उम्मे कुलसूम के खुतबात, और इससे पहले मदीना से लेके करबला तक खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात, इन खुतबात के ज़रिए से लोगों तक इस वाक़े के तमाम जवानब, इसके तमाम अवामिल अहदाफ सही तरह से पहुँच पाए हैं, सही तरह से नकल हो सका है। तीसरा, इसमें रजस खानी ज़्यादा हुई है, रजस जो है वो तारीख में रह गए हैं और उसके ज़रिए से भी ये वाक़ हमें सही अंदाज में हमारे तक पहुँचा है। इस वाक़े में ख़त व किताबत का रद्द बदल आपस में ज़्यादा हुआ है, कूफा और वालों के दरमियान और इमाम हुसैन के दरमियान ख़त व किताबत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुआविया के दरमियान ख़त व किताबत, ख़ुद आदा के दरमियान, यजीद और इब्न ज़ियाद के दरमियान आपस की ख़त व किताबत, इस वाक़े में ख़त व किताबत बहुत ज़्यादा है। उस ख़त व किताबत के ज़रिए से भी वाक़ा हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से पहुँचा है। फिर इस वाक़े में ख़ुद ऐनी रावी जो हैं, इमाम ने भी अफराद को मामूर कर रखा था कि जो इसकी को रिवायत करें, और उस तरफ से दुश्मन में भी इसके जो है वो रावी जो है वो मौजूद थे। इस वाक़े में सवाल और जवाब ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से वाक़ा बिल्कुल सही तरह से रोशन होकर सामने आया, लिहाजा वाक़ा सनद के लिहाज से और नकल के उनवान से जो है वो गनी है, लिहाजा मुमकिन नहीं है कि नरेशन और नकल के लिहाज से वाक़े में कोई सुकम रह गया हो, कोई कमी रह गई हो और उसकी वजह से इसमें तहरीफात हुई। बस तहरीफात का आमिल क्या है, इंशाल्लाह हम इसको अगले लेक्चर में बयान करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, इस सिलसिले की अगली कड़ी तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा आपका हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।